एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी,
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी।
यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा,
यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा।
महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। खाने से तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से,
तेरे मार खाने से तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को तो ग्रहण कर, हमें आशीष दे, विशेषकर मुझे अगुवाई कर पिता, तेरा पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि मैं तेरा पवित्र आत्मा के सामर्थ से तेरा वचन को प्रस्तुत करने सकूं, और जो लोग सुन रहे हैं पिता, मेरे हर एक श्रोताओं के संग हो, कि वे लोग तेरे वचनों को सुन सके और समझ सके और तेरे नज़दीक आ सके पिता, उन सबों को तो आशीषित कर। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। फिर मंदिर की सफाई करना। अपनी सेवकाई के आरंभ में मसीह ने मंदिर में से उन सभी लोगों को खदेड़ बाहर किया था जो अपने गलत कामों द्वारा मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर रहे थे। मसीह के अधिकारपूर्ण और कठोर व्यवहार ने उन व्यापारियों के मन को आतंकित कर दिया था। अपने मिशन, अपने उद्देश्य की पूर्ति होने के आखिरी समय पर एक बार फिर वह मंदिर में आया और देखा कि वही पुराना लेन देन का ढर्रा मंदिर में फिर से चल रहा है, बल्कि पहले से भी अधिक खराब स्थिति हो चुकी है। मंदिर के आंगन का बाहरी भाग तो लगभग जानवरों का बाड़ा बन चुका है। उन तमाम लेन देन करने वालों की आवाजें, पशुओं के डकारने और सिक्कों की खनखनाहट के बीच गुम होती जा रही थी, और उन्हीं शोरगुल के बीच याजक लोग मंदिर की पवित्र विधियों को संपन्न कर रहे थे। मंदिर के अधिकारी लोग ही पशुओं के क्रय विक्रय और सिक्कों की अदला बदली के कार्यों में व्यस्त थे। वे लोग धन लाभ प्राप्त करने की लालच के नियंत्रण में इतने हो गए थे कि परमेश्वर की दृष्टि में वे चोरों से भले नहीं थे। जिस पवित्र कार्य को उन्हें संपन्न करना होता था, उसके विषय में याजक और अधिकारी लोगों ने महसूस करना ही छोड़ दिया था। प्रत्येक फसह पर्व और होम बलि के पर्व के अवसर पर हजारों पशु बलिदान किए जाते थे और उनके खून को लेकर याजक लोग वेदी पर चढ़ाते थे। यहूदी लोग इस खून के चढ़ावे से खूब परिचित हो गए थे और उस लहू के बलिदान के कारण को अर्थात पाप को लगभग भूल से गए थे जिसके कारण पशुओं का बलिदान किया जाता था। उन्होंने इसे कोई महत्व नहीं दिया कि वह खून परमेश्वर के प्रिय पुत्र के खून का एक प्रतीकात्मक रूप है जो संसार को जीवन देने के लिए बहाया जाने वाला था और इन बलिदानों के द्वारा मनुष्यों के ध्यान को बलिदान होने वाले उद्धारकर्ता की ओर खींचना था। यीशु ने उन वध होने वाले मूक पशुओं की ओर देखा और यह भी देखा कि यहूदियों ने इस खून बहाने और पशुओं पर अत्याचार करने का कितना बड़ा नाटक रचा रखा है। विनम्रता के साथ पाप के लिए पश्चाताप करने के स्थान पर उन्होंने इतनी अधिकता से पशुओं की बलि आरंभ कर दी थी कि मानो इस हृदयहीन सेवा से परमेश्वर का सम्मान बढ़ा रहे हो। याजक और अधिकारीगण अपनी खुदगर्जी और धन के लालच में अपने हृदयों को कठोर बना लिए थे। जो प्रतीक परमेश्वर के मेमने की ओर संकेत कर रहा था उसे उन्होंने अपने स्वयं के लाभ का माध्यम बना लिया था। इस कारण से लोगों की दृष्टि में इस बलिदानी सेवकाई की पवित्रता बहुत सीमा तक नष्ट हो चुकी थी। यीशु का क्रोध भड़क उठा। वह जानता था कि उसका स्वयं का खून संसार के पापों की खातिर बहुत शीघ्र ही बहाया जाने वाला है। इन याजकों और पुरनियों के हृदय में इन पशुओं के बहाये जाने वाले खून से अधिक उसका कोई महत्व नहीं होगा। मसीह ने भविष्यवक्ताओं द्वारा बहुत समय पहले इन कार्यों के विरुद्ध कह दिया था। सामुएल द्वारा कह गया था, क्या यहोवा होमबलियों और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। और यशायाह ने यहूदियों के धर्म त्याग को भविष्य दृष्टि में रखते हुए उन्हें सदोम और अमोरा के शासकों का प्रतीक बताते हुए कहा, हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों व भेड़ के बच्चों व बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यह हम पहला सामुएल 15:22 और यशायाह 1:10-13 और 16:17 में पाते हैं। जिसने स्वयं इन भविष्यवाणियों को दिया था अब अंतिम बार फिर चेतावनी देते हुए दोहराता है। भविष्यवाणी को पूरा करते हुए लोगों ने यीशु को इज़राइल का राजा घोषित कर दिया था और यीशु ने उनकी श्रद्धा को ग्रहण किया तथा एक राजा के कर्तव्य को भी स्वीकार कर लिया। अब उसे एक राजा के रूप में ही कार्य करना था। वह जानता था कि भ्रष्ट हो चुकी याजकीयता में सुधार करने की कोशिश व्यर्थ ही जाएगी। फिर भी उसे अपना कार्य तो करना था। अब विश्वासी लोगों के सामने उसके ईश्वरीय उद्देश्य के प्रमाण को प्रस्तुत करना आवश्यक था। एक बार फिर मंदिर के आंगन में यीशु की वेद देने वाली दृष्टि लोगों पर पड़ी तथा सभी लोग पलटकर यीशु को ताकने लगे। याजक और अधिकारी लोग, फरीसी तथा अन्य जाति के लोग सब के सब अचरज भरी नजरों से उसे देखने लगे जो स्वर्ग के प्रतापी महाराजा के समान उनके सामने खड़ा था। ईश्वरीयता मनुष्यता में घुलकर चमक रही थी। मसीह को एक सम्मानपूर्ण महिमा में उस क्षण ऐसा प्रस्तुत किया जैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जो लोग उसके समीप खड़े थे वे लोग उससे इतने दूर हट गए जितना भीड़ उन्हें जाने दे सकती थी। थोड़े से शिष्यों के साथ मुक्तिदाता वहां अकेला खड़ा रहा। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। गहरी चुप्पी सहन से बाहर होती जा रही थी जैसे एक आंधी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। वैसे ही प्रचंड रूप से मसीह ने बोलना आरंभ कर दिया। लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। मंदिर के पूरे क्षेत्र में उसकी आवाज नरसिंह के समान गूंज उठी। क्रोध से भरा उसका चेहरा मानो लोगों को जलाकर भस्म कर देगा। बड़े ही अधिकार के साथ उसने आदेश दिया, इन्हें यहाँ से ले जाओ, जिस तरह हम यूहन्ना 2:16 में पाते हैं। लगभग 3 साल पहले यीशु के ऐसे ही आदेश पर मंदिर के अधिकारी बहुत ही शर्मिंदा होकर वहां से भाग खड़े हुए थे। तभी से वे अपने स्वयं से डर पर आश्चर्य कर रहे थे और सोचते थे कि क्यों कर उस साधारण से व्यक्ति के आदेश का पालन किया था, और मन में सोच रखा था कि अब ऐसी किसी घटना का दोहराना उनके लिए असंभव होगा। फिर भी इस समय वे पहले से भी अधिक आतंकित हो गए थे और तुरंत ही उसके आदेश का पालन किया। कोई भी वहां पर ऐसा नहीं था जो उसके अधिकार पर कोई प्रश्न कर सके। उसके सामने से व्यापारी और याजक अपने पशुओं को लेकर भाग खड़े हुए। मंदिर से बाहर जाते समय उन लोगों को एक बहुत बड़ी भीड़ मिली जो अपने बीमारों के लिए उस महान चंगा करने वाले भेद के विषय में पूछताछ कर रही थी। इन भागते हुए लोगों ने जो कुछ उन्हें बताया उससे बहुत से लोग बाहर से ही वापस चले गए, जिसकी एक टेढ़ी भटुकी ने याजक और अधिकारियों को अपने सामने ठहरने नहीं दिया। वे लोग उस महान शक्तिशाली से मिलने से डर गए, परंतु उस भागती भीड़ के बीच से भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपना रास्ता बना लिया और मसीह तक पहुंचने के लिए बेकरार थे, क्योंकि वही उनका अंतिम आशा था। मंदिर से बहुत बड़ी संख्या में लोगों के चले जाने के बाद थोड़े से लोग पीछे बाकी रह गए थे और दूसरे नए लोग जो भीतर आ रहे थे उन्हीं के साथ ये लोग भी मिल गए थे। एक बार फिर मंदिर का आंगन बीमारों और रोगियों से भर गया था और यीशु एक बार फिर अपनी सेवकाई के कार्य को करने लगा। कुछ समय बाद याजक और अधिकारी लोग फिर मंदिर में वापस आए। जब आतंक ठंडा हो गया तो उन्हें इस चिंता ने घेर लिया कि यीशु का अगला कदम क्या होगा। उन्हें यह उम्मीद हो गई थी कि अब वह दाऊद के सिंहासन पर कब्जा कर लेगा। चुपचाप जब वे मंदिर में प्रवेश करने लगे तो भीतर से परमेश्वर की स्तुति करते हुए पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की आवाजें उन्हें सुनाई पड़ी। भीतर प्रवेश करते ही जो दृश्य उनके सामने आया उससे वे भौचक्के रह गए। उन्होंने देखा कि बीमार चंगे हो गए हैं, अंधे देखने लगे हैं, बहरे सुनने की शक्ति प्राप्त कर लिए हैं और लंगड़े खुशी के मारे उछल कूद रहे हैं। सबसे अधिक आनंद तो बच्चे उठा रहे थे। यीशु ने उनकी सारी व्याधियों और पीड़ाओं को हटा दिया था, उन्हें अपनी बाहों में ले लिया था। उनके चूमने और प्यार करने को मसीह ने खुशी से ग्रहण किया और जब वह लोगों को शिक्षा दे रहा था उस समय कुछ बच्चे तो उसकी गोद में ही सो गए थे। अपनी खुशी और आनंद भरी आवाजों में बच्चे उसकी प्रशंसा और स्तुति कर रहे थे। पहले दिन की भांति ही आज तीसरे दिन भी वे सब लोग होसाना होसाना के नारों के साथ खजूर की डालियों को लहराते हुए मुक्तिदाता के आगे आगे विजयी जयघोष कर रहे थे। उनकी उस गगनवेदी आवाजों से मंदिर का कोना कोना गूंज रहा था। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उधार पाया हुआ है। भजन संहिता 118:26 और जकरिया 9:9 में पाते हैं, दाऊद के संतान को होसन्ना। बिना किसी व्यवधान के ये खुशी की आवाजें मंदिर के अधिकारियों के लिए एक प्रकार से पीड़ा पहुंचाने वाली बात थी। उन्होंने ठान लिया कि इस प्रकार के प्रदर्शन को हर हाल में रोक देना है। उन्होंने लोगों के सामने कहना आरंभ कर दिया कि बच्चों के पैरों से और इस प्रकार की चीख पुकार से परमेश्वर के घर का अपमान हो रहा है। यह देखकर कि उनकी बातों का लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है तो उन अधिकारियों ने यीशु से कहा, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चे के मुंह से तू ने स्तुति सिद्ध कराई? भविष्यवाणी यह बताती है कि अवश्य है कि मसीह को राजा घोषित किया जाए और उन शब्दों को पूरा होना अवश्य है। जब इज़राइल के याजक और अधिकारी लोग उसकी महिमा और स्तुति करने से इनकार कर दिए, तब परमेश्वर ने बच्चों को उभारा कि वे उसकी गवाही दे। यदि बच्चों की आवाज को बंद कर दिया गया होता तो उस मंदिर के खंभे मुक्तिदाता की स्तुति और महिमा करने लगे होते। फरीसी लोग बहुत ही घबराए हुए और परेशान थे। जिस व्यक्ति को वे डांट तक नहीं सकते थे, वही सब पर नियंत्रण कर रखा था। यीशु ने तो जैसे मंदिर के अभिभावक का दर्जा ले रखा था। इससे पहले उसके कार्य या बातें इतने शक्तिशाली और प्रभावकारी नहीं होते थे। यद्यपि उसने पूरे यरूशलेम में आश्चर्य काम किए थे, परंतु इससे पहले इस प्रकार से गंभीर और प्रभावित करने वाले नहीं थे। उन लोगों की उपस्थिति में जिन्होंने उसके अद्भुत कार्यों को देखा था, याचक और अधिकारियों में इतना साहस नहीं था कि उसके विरोध कुछ कर सके। यद्यपि उसके उत्तर को सुनकर वे लोग क्रोधित और व्याकुल हो गए थे, परंतु उस दिन कुछ भी करने में वे असफल रहे। बाद में वे उसके पास आकर कहते हैं, तू ये काम किस अधिकार से करता है? यीशु ने उनसे भी पूछा, मैं भी तुमसे यह प्रश्न करता हूं, यहूना का बपतिस्मा कहां से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से था? वे लोग अपने में फुसफुसाकर बातें करने लगे और वे लोग फंस गए। वे लोग सोचे, अगर वे लोग कहते हैं परमेश्वर की ओर से, तो यीशु उन्हें कहेगा, तो तुम लोग क्यों नहीं बपतिस्मा देने वाला यहूना के बातों पर विश्वास किया? और यदि वे लोग कहेंगे कि वह मनुष्य की ओर से था, तो उनको डर था कि लोग उन्हें पथरवाह करेंगे, क्योंकि सब लोग जानते थे या समझ रखे थे कि यहूना परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। तब वे लोग उससे जवाब दिए, हम नहीं जानते। तब मसीह ने भी कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यीशु मसीह भी उन्हें बुद्धिमानी से कहता है, मैं भी तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। यीशु मंदिर का नींव था। यीशु वह चट्टान था जिसे राजमिस्त्रियों ने नकारा था, तिरस्कार किया था, पर परमेश्वर ने उसी चट्टान को मंदिर के कोने का सिर बना दिया। जो विश्वासी हैं, उनके लिए मसीह दृढ़ नींव है। ये लोग हैं जो चट्टान पर गिरकर अपने आप को तोड़ डाले हैं। मसीह को पूर्ण समर्पण और उसमें विश्वास रखने का यह प्रतीक है। चट्टान पर गिरने और अपने आप को तोड़ डालने का अर्थ है अपनी स्वयं की धार्मिकता को त्याग कर एक बच्चे के समान विनम्रता के साथ मसीह के पास अपने पापों का प्रस्ताव करते हुए और उसके क्षमा करने के प्यार पर विश्वास और भरोसा रखते हुए आए, और इस प्रकार से विश्वासी और आज्ञाकारी होकर मसीह रूपी चट्टान पर हम दिन प्रतिदिन अपने आप को बनाते जाते हैं। इस जीवित पत्थर पर यहूदी और अन्य जाति के लोग समान रूप से अपना घर बना सकते हैं। केवल यही नींव ऐसी है जिस पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। यह इतना चौड़ा है, इतना शक्तिशाली है कि सारे संसार के बोझ को सह सकता है, और जीवित चट्टान मसीह से संबंध रखने के द्वारा जो भी इस चट्टान पर अपना घर बनाता है, वह स्वयं जीवित चट्टान हो जाता है। बहुत से लोग अपने स्वयं के प्रयास से गढ़कर, संवार कर, घिस कर अति सुंदर बना लेते हैं, परंतु वे जीवित चट्टान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वे मसीह से नहीं जुड़े हुए हैं। बिना इस संबंध के कोई भी मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सकता है। जब तक मसीह का जीवन हमें नहीं आ जाता, तब तक हम संसार की परीक्षाओं के तूफान को झेल नहीं सकते हैं। हमारी अनंत सुरक्षा इस दृढ़ नींव पर बने रहने पर निर्भर करती है। असंख्य लोग ऐसी नींव पर अपने जीवन रूपी घर को बना रहे हैं जो परीक्षा किए हुए नहीं हैं। जब जोर की बारिश होती है, तूफान उठता है और बाढ़ आती है, तो उनका घर बह जाता है, धराशाही हो जाता है, क्योंकि वह घर अनंत चट्टान यीशु मसीह जो है उस पर नहीं बना होता है, जो कोने के सिरे का पत्थर अर्थात वही यीशु मसीह है। जो लोग वचन ना मानकर ठोकर खाते हैं उनके लिए मसीह ठोकर खाने का पत्थर है, परंतु जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। आइए हम यीशु मसीह के पास आए, हम यीशु मसीह को उस कोने का चट्टान न्यू समझे और उसको अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करें। वही हमें बचाएगा, उस पर हम पूरे रूप से समर्पण हो जाए और अपने पश्चातापी मन को उसके पास लाए। वह हमें स्वीकार करेगा और नया जीवन देगा और अनंत जीवन प्रदान करेगा। पर यदि हम अपने आप को नहीं झुकते हैं तो वह पत्थर वह चट्टान हमारे ऊपर गिरेगा और हम मिट्टी और धूल जैसा बन जाएंगे। इसीलिए आइए मेरे प्यारों भाई और बहनों, यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करें। परमेश्वर हम सबों के साथ हो, परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे सम्मुख आते हैं, हम तुझसे विनती करते हैं पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, तू हमें ग्रहण कर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तूने प्रभु यीशु मसीह को दिया, हमारा उद्धारकर्ता को दिया। वह सच्चा जीवित चट्टान है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। हम उसके पास आते हैं, हम उसके पास गिरते हैं, तू हमें हमारे मन को पिघाल दे और हमें ग्रहण कर और हमें नया जीवन दे। ऐसा ना हो कि हम कठोर हृदय रखे रहें और जब वह चट्टान गिरे तो सबको पीस डाले, ऐसा स्थिति ना होने दे पिता, परंतु हमें तेरा प्रेम को समझने के लिए मदद कर, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चला कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं और तेरे प्रेम से तेरे उद्धार को हम ग्रहण करें। हमें आशीष दे, सबों को आशीष दे पिता। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446 पुणे 411037 महाराष्ट्र भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaveentist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा, AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।